आशाओं के दीप जला,
कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
प्रिय श्रोताओं, आज के परिचर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भाई नरेश जी उपस्थित हैं और आज की परिचर्चा हम उनके साथ जो करने जा रहे हैं उसका विषय है आत्महत्या और उसका समाधान। तो भाई नरेश, आत्महत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब के पुस्तक पहला अध्याय पद 14 और 15 में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि मनुष्य जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए ऐसे कार्य करता है, अर्थात आत्महत्या करता है।
इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं?
इसके संभावित कारणों में हम लोग देख सकते हैं मानसिक विकार, औषधि का दुरुपयोग, सांस्कृतिक, पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति तथा अनुवांशिकी।
क्या इसका कोई अनुमानिक आंकड़ा हमारे पास है तथा भारतवर्ष में इसके लिए कोई कानून है?
जी हाँ, लगभग 8 से 10 लाख लोग हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिससे यह दुनिया का 10वें नंबर का मानव मृत्यु का कारण बना है। भारतवर्ष में पिछले वर्ष का अगर आंकड़ा देखें तो 1,34,000 लोग आत्महत्या का शिकार बने हैं। आत्महत्या और आत्महत्या का प्रयास पूर्व में आपराधिक रूप से एक दंडनीय अपराध था। भारतीय दंड विधान के धारा 309 के अनुसार आत्महत्या के प्रयास के लिए 1 साल तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।
क्या आप पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णित आत्महत्याओं का संक्षिप्त विवरण हमारे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं?
जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या करने की घटना का उल्लेख मिलता है, जैसे न्यायियों की पुस्तक 9:52-54 पद में हम लोग देखते हैं अबीमेलेक को, जिसने अपना पहचान खोने के वजह से और अपमानित होने के डर से आत्महत्या किया। न्यायियों 16:25-30 पद में हम लोग देखते हैं सिमसन के बारे में, जिसने बदला लेने के लिए आत्महत्या की। 1 सामुएल 31:4 जहां हम लोग साउल को देखते हैं, जो असफलता और ठट्ठे में उड़ाए जाने के भय से आत्महत्या किया। 1 सामुएल 31:5 जहां हम लोग साउल के हथियार ढोने वाले को देखते हैं, जो हताशा में फंसकर राजा के साथ मर जाने की इच्छा के वजह से आत्महत्या किया। उसी तरह हम लोग देखते हैं 2 सामुएल 17:23 में अहितोपेल को, जिसने अपने मन माफिक न होने की वजह से आत्महत्या किया। 1 राजा 16:15-20 में हम लोग देखते हैं जिम्री को, जिसने वृद्धों और शासकीय संबंधित समस्या के वजह से आत्महत्या किया। और अंत में हम लोग मत्ती 27:3-5 में यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं, जिसने भौतिकता में फंसकर अपने आप को दोषी पाकर आत्महत्या किया।
तो भाई नरेश जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आत्महत्या के पीछे किस प्रकार की मनोभावनाएँ कार्य करती हैं?
इन उदाहरणों से हम लोग यही समझ सकते हैं कि जब लोगों को लगता है कि उनके जीवन का कोई मूल्य, लक्ष्य और मतलब नहीं, कोई उनका ध्यान नहीं देता, उनकी समस्या का कोई हल नहीं है, तब वो हताश, निराश और विचलित होकर आत्महत्या करते हैं। परंतु हमें एक बात याद रखना चाहिए कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हताशा और निराशा का एकमात्र समाधान या इलाज परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम यहोवा का आश्रय देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होता है, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। भजन 33:20-22 में ऐसा कहा गया।
तो भाई नरेश जी, आपने एक अच्छा डाटा हमारे सामने प्रस्तुत किया। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आत्महत्या की समस्या का समाधान क्या हो सकता है?
आत्महत्या का समस्या का समाधान में हम लोग देख सकते हैं, जिस किसी को भी इस तरह का समस्या हो, वो अपनी मन की बातें खोलकर अपने लोगों को रखे, और जिन लोगों को वो बातें बताई जाए, वो लोग परमेश्वर की बातें उस व्यक्ति के साथ चर्चा करें। जैसे कि हम लोग देखते हैं मत्ती 11:28 में लिखा गया, प्रभु यीशु ने वहाँ पे कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें हमारी सारी समस्या, हताशा, निराशा और बोझ को लेकर यीशु मसीह के पास आना है और उन्हें पुकारना है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, रोमी 10:13, और बचाया जाएगा। जितने लोग उसे ग्रहण करेंगे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जाएगा, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। योना 1:12। जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमें नया जीवन, संपूर्ण रूप से पवित्र और धार्मिक जीवन देंगे। जैसे कि 2 कुरिन्थी 5:17 में कहा गया है, यदि कोई मसीह में है तो वो पूर्ण रूप से नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रभु यीशु योना 5:24 में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमें हर हाल, हर अवस्था और हर परिस्थिति में हमारे आशा के आधार प्रभु यीशु पहला तीमुथियुस 1:1 की ओर ताकते रहना है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह 29:11। हमें इस पद पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि परमेश्वर स्वयं यहाँ पे बोलते हैं कि जो कल्पनाएं उन्होंने हमारे लिए की है वो हमारे लिए कुशल की है, अर्थात किसी भी तरह के अवस्था और परिस्थिति में हमें परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर उनके राह में चलते रहना है, उनके आज्ञाकारिता में बने रहना है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये आत्महत्या जैसी जो समस्याएं हैं वो हमारी समाज से संपूर्ण रूप से खत्म हो सकती है।
तो नरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं के लिए दिया है और मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि अगर कोई भी मनुष्य अगर सारी बातों को सकारात्मक तरीके से परमेश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करे तो अवश्य ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा, और हम लोग जानते हैं कि ऐसा करना भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है और परमेश्वर का वचन भी इसके लिए हमें मना करता है। जब भी निराशा हमारे जीवन में कार्य करे हमें प्रार्थना करना है और अपने आप को सकारात्मक तरीके से परमेश्वर के सामने रखना है। मुझे विश्वास है कि आज जो आपने सलाह दी हमारे श्रोताओं को उसके द्वारा अवश्य हमारे श्रोताओं को दुख और निराशा के समय में भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी ये प्रार्थना है, परमेश्वर आप सभी श्रोताओं को आशीष दे। और नरेश जी, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे श्रोताओं के लिए दिया। थैंक यू
जी, धन्यवाद।
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए, हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संस्था द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क डाक बाइबल अध्ययन में अपना नामांकन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09-835-983-759। पुनः एक बार 09-835-983-759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।